नमस्कार भारत, 9 अक्टूबर बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग मामले की जांच में सहयोग से किया इनकार।
This president is putting his corruption on full display.
अफगान तालिबान ने किया अपने 11 सदस्यों के बदले 3 भारतीय इंजीनियरों को रिहा करने का दावा। जानेंगे क्या हैं इस अदल बदल के मायने।
ये तो सच है कि तालिबान की रिहाई हुई है और ये 3 इंडियन इंजीनियर्स के बदले।
जलजमाव के बाद बिहार की राजधानी पटना में बढ़े डेंगू के मामले, बेअसर हो रहे हैं प्रशासन के दावे।
स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, कम से कम अपने से आकर अस्पताल की वस्तु स्थिति देख लें।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई में व्हाइट हाउस ने यूरोपीय संघ में तैनात अमरीकी राजदूत को पेश होने से रोक दिया है। इसके बाद कमेटी ने राजदूत को समन जारी कर दिया। राजदूत गोर्डन सोटलैंड को भेजे खत में 3 कमेटियों के डेमोक्रेट चेयरमैन ने 1 सप्ताह के अंदर पेश होने के लिए कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप की फोन पर विवादास्पद बातचीत के लिए महाभियोग चलाया जा रहा है। ब्रिटानी सरकार के करीबी सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और एंगेला मर्केल के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद ब्रेग्जिट समझौता अनिवार्य रूप से असंभव हो गया है। इस बीच ब्रिटेन की संसद को निलंबित करने के प्रस्ताव को सांसदों ने पास कर दिया है। संसद अगले 14 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। महारानी का भाषण भी उसी दिन होगा। इक्वाडोर में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो को सरकारी मुख्यालय को दूसरे शहर में स्थानांतरित करना पड़ा है। मोरेनो ने पिछले सप्ताह ही आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारी सरकारी खर्चों में कटौती और तेल सब्सिडी को खत्म करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से तेल पर सब्सिडी हटाई गई है, तेल के दाम दूने हो गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप इक्वाडोर की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही लोगों को निशाना बना सकते हैं। आज जहां हम हैं, इसी की बदौलत हैं। ये थे इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो के शब्द। सीरिया में कुर्द लड़ाकों के कमांडर ने कहा है कि वह हालात का समाधान निकालने के लिए अभी भी अमरीका से बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सैनिकों को वापस लेने की घोषणा की थी। एसटीएफ के जनरल मजलूम आब्दी ने बीबीसी से कहा कि अगर अमरीका इस्लामिक स्टेट के खतरे को बिना खत्म किए वापस जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी।
Domestic American decision, but if they withdraw without meet the reasons that they
ये अमरीका का अंदरूनी फैसला है, लेकिन अगर वे उस चीज़ को बिना हासिल किए वापस लौटते हैं जिसके लिए वे सीरिया आए थे, यानी इस्लामिक स्टेट को हराने, तो ये ऐतिहासिक गलती होगी। वे सीरियाई संकट का राजनीतिक हल निकालने और इस्लामिक स्टेट को से आज़ाद कराए गए इलाकों की स्थिरता के लिए यहां आए हुए थे। ये सीरियाई लोगों और खुद उनके लोगों के लिए ऐतिहासिक गलती होगी। ये थे जनरल मजलूम आब्दी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश विभाग ने चीनी अधिकारियों पर वीज़ा पाबंदी लगाई है। अमरीका का आरोप है कि अधिकारी शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम वीगर समुदाय पर अत्याचार में शामिल रहे हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह कदम सोमवार को अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के उस फैसले के तहत उठाया गया है जिसमें 28 चीनी संगठनों को काली सूची में डाला गया था। चीन ने इसे उसके अंदरूनी मामलों में दखल बताया है। फिजिक्स के लिए इस साल का नोबल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों का काम ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जेम्स पीबल्स को नए सिद्धांत रखने के लिए, जबकि मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज को सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिए गए। फिलाडेल्फिया की एक अदालत ने फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर $8 अरब का मुकदमा लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि बचपन में उसने कंपनी की दवा रिस्पर्डाल ली थी, जिसके बाद उसके स्तन विकसित हो गए हैं। ये दवा मानसिक रोग सिज़ोफ्रेनिया में 1990 से ही इस्तेमाल की जाती रही है। पुर्तगाल में रविवार को हुए चुनाव के बाद राष्ट्रपति ने एंटोनियो कोस्टा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। कोस्टा की वाम रुझान वाली सोशलिस्ट पार्टी की इन चुनावों में जीत हुई है, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डिसूजा ने कहा है कि एंटोनियो कोस्टा अब नामित प्रधानमंत्री हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग को लेकर जारी जांच में सहयोग करने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से डेमोक्रेटिक नेताओं को भेजे पत्र में इस जांच को निराधार और संवैधानिक रूप से अमान्य करार दिया गया है। इस समय डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाली तीन कमेटियां ट्रंप की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन के खिलाफ जांच करने के लिए यूक्रेन को मजबूर करने की कोशिश की थी। जो बाइडेन 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार हैं। इस पूरे मामले पर बीबीसी संवाददाताओं की खबरों का सार सुनिए हमारे सहयोगी संदीप राय से।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की कार्रवाई में एक प्रमुख गवाह को कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होने से ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है। इसके बाद व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि यूरोपीय संघ में उनके राजदूत एक कंगारू कोर्ट के सामने पेश हों। मामले की जांच कर रही डेमोक्रेटिक सदस्यों की अगुवाई वाली कमेटी को भेजे पत्र में कहा गया है कि ये जांच आधारहीन और संवैधानिक रूप से अवैध है। डेमोक्रेटिक सदस्यों की अगुवाई वाली तीन कमेटियां इस मामले की जांच कर रही हैं। हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस की चेयरमैन कैथरीन क्लार्क ने बीबीसी से कहा कि ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा था।
दिस प्रेसिडेंट इज पुटिंग हिज करप्शन ऑन फुल डिस्प्ले।
राष्ट्रपति अपना भ्रष्टाचार पूरी तरह दिखाने पर तुल गए हैं। हमारे पास विसल ब्लोअर की शिकायत है, हमारे पास यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई बातचीत का ब्यौरा व्हाइट हाउस की ओर से उपलब्ध कराया गया है और ये साफ दिखता है कि राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक हित को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखा। ये थे कैथरीन क्लार्क के शब्द। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने भी इसे सरकारी काम में बाधा पहुंचाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो अब गॉर्डन सोटलैंड को कानूनी नोटिस जारी करेंगे, जिन्होंने खुद ही यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर हुई विवादास्पद बातचीत के बारे में सबूत देने की पेशकश की थी। हाउस स्पीकर नैन्सी पोलसी ने कहा कि व्हाइट हाउस ने जिस तरह यूरोपीय संघ में तैनात राजदूत को कमेटी के सामने गवाही देने से रोका, वो सत्ता का दुरुपयोग है।
Not any of us went to Congress to impeach a president. This is very serious for our country.
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए हम में से कोई कांग्रेस में नहीं गया। यह हमारे देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रपति कांग्रेस को तथ्य जुटाने से रोक रहे हैं। इस तरह का काम करना सत्ता का दुरुपयोग है और यही कारण है कि हम महाभियोग की जांच कर रहे हैं। ये थे नैन्सी पेलोसी के शब्द। मंगलवार को विसल ब्लोअर के वकीलों ने दावा किया था कि इस मामले में एक और विसल ब्लोअर सामने आया है और उसके पास कुछ ठोस जानकारियां हैं। इस फोन कॉल के संबंध में पहले विसल ब्लोअर ने इसी साल अगस्त में जानकारी दी थी। हाउस ओवरसाइट कमेटी के रिपब्लिकन सदस्य जिम जॉर्डन ने कहा है कि वो और उनके सहयोगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।
We understand the reason why the State Department decided not to have Ambassador Sondland appear today.
हम समझते हैं कि क्यों विदेश मंत्रालय ने राजदूत सोटलैंड को आज पेश होने से रोकने का फैसला किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि शिफ इस जांच को अनुचित और पक्षपाती तरीके से चला रहे हैं। आप सोचिए कि डेमोक्रेट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आम चुनाव के 13 महीने पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चला रहे हैं और वो भी एक ऐसे अज्ञात विसल ब्लोअर के दावों पर जिसके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, जो राष्ट्रपति के प्रति निष्पक्ष भी नहीं है। ये थे रिपब्लिकन सदस्य जिम जॉर्डन के शब्द। आरोप है कि ट्रंप ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2020 में होने जा रहे अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। आरोप यह भी है कि ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली करीब $400 मिलियन की आर्थिक मदद को इसीलिए रोक रखा है। महाभियोग जांच में एक गतिरोध की स्थिति बन गई है क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इसमें सहयोग नहीं करेगा।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ चल रही जांच में सहयोग से किया इनकार, जानकारी दे रहे थे संदीप राय। हाल ही में अफगान तालिबान के हवाले से खबर आई कि उसने एक साल से ज्यादा समय से बंधक बनाकर रखे तीन भारतीय इंजीनियरों को अपने 11 सदस्यों की रिहाई के बदले छोड़ दिया है। किन इंजीनियरों को रिहा किया गया, तालिबान के कौन कौन से सदस्य छूटे, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि तालिबान के अलावा किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इंजीनियरों की रिहाई अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमई खालिजान और तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मुलाकात के बाद हुई। हमारी सहयोगी भूमिका राय ने बात की तालिबान और अफगानिस्तान मामलों की गहरी जानकारी रखने वाले पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई से और इस घटनाक्रम के बारे में और जानकारी चाहिए।
हाँ, इसके बारे में तालिबान कह रहे हैं कि उनके 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है अफगानिस्तान में, और मीडिया में भी ये बातें आई हैं, लेकिन अभी तक अफगान सरकार ने इसके बारे में कोई ऑफिशियली फॉर्मली बात नहीं की और ना अमेरिकियों ने इसका जिक्र किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये तालिबान और अमेरिकियों के दरमियान जो अमन के मुज़ाकरात पहले हो रहे थे और फिर 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी तालिबान का डेलीगेशन भी आया था और जो अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे हैं जलमे खलीलजाद, तो उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये डील हुई है अमेरिका और तालिबान के दरमियान और इनको बागराम की जेल से रिहाई मिली है जो कि अमेरिका के कंट्रोल में था। ये तो सच है कि तालिबान की रिहाई हुई है और ये 3 इंडियन इंजीनियर्स के बदले ये कहा जा रहा है कि रिहाई हुई है, लेकिन ऑफिशियली इसको अभी अफगान सरकार ने और अमेरिका ने तस्दीक करना है।
भारतीय जो इंजीनियर थे जिन्हें 2018 मई में तालिबानी चरमपंथियों ने अपने कब्जे में लिया था और किडनैप किया था, जिसे कहते हैं ये KEC कंपनी के जो थे ये एम्प्लॉय थे, तो इन्हें रखा कहाँ गया था?
इसके बारे में कोई तफसील नहीं है। ये तो तालिबान ने कई लोगों को इस तरह अगवा किया। अभी भी गैर मुल्की जो हैं प्रोफेसर हैं दो, एक अमरीकी है एक ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी तालिबान के कब्जे में है, और इसके अलावा भी कई अफगान और इस तरह अफगान जो हैं फौजी और पुलिस और सिविलियन वो भी उनके कब्जे में हैं। तो ये फिर अगवा करते हैं, उसके बाद डील करते हैं, अपने साथियों को रिहा करवाते हैं और कभी कभी रैंसम की रकम भी ले लेते हैं।
लेकिन 3 भारतीयों के बदले 11 तालिबानी चरमपंथियों की डील कुछ अटपटी नहीं लगती है?
हाँ बिल्कुल, तालिबान तो 11 रिहा होने की बात है और इंडियन जो इंजीनियर है वो सिर्फ 3 है, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान की जो रिहाई हो रही है 2 उसमें अहम लोगों का नाम आ रहा है, बाकियों के अभी तक नाम भी मालूम नहीं हुए। वो 2 जो हैं वो तालिबान के शेडो गवर्नर थे, एक शेख अब्दुल हकीम और एक प्रथे मुल्ला रशीद, बाकी लोग शायद इतने अहम नहीं है, ये 2 ही अहम थे। अब ये मुमकिन है कि भारतीय सरकार ने अफगान सरकार से कहा हो कि इनकी रिहाई की कोशिश की जाए, उनकी फैमिलीज का भी जाहिर है प्रेशर होगा, तालिबान के ऊपर भी प्रेशर है जो उनके लोग जो कैद में हैं उनकी रिहाई के लिए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी शायद बातचीत हुई है और बिलाखिर ये डील शायद हो गई है।
रहीमुल्ला यूसुफजई दे रहे थे जानकारी। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG की एक रिपोर्ट से झटका लगा है। APG की फाइनल रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर कहा गया है कि पाकिस्तान ने इसे रोकने में संतोषजनक कदम नहीं उठाए हैं। APG ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की समग्र बैठक से 10 दिन पहले जानकारी की है। FATF दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है और उसकी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने पर फैसला होना है। इस्लामाबाद में BBC उर्दू की संवाददाता शुमैला जाफरी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून मामलों के जानकार अहमद बिलाल सूफी से इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत बात की और जानना चाहा कि APG की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए कहीं मुश्किलें तो नहीं लेकर आएगी।
आगे पीरियोडिकली चलता रहेगा, प्लेनरी है, یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اٹسیلف جو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اس کی اپنا سیشن ہوگا پیرس میں, جس میں یہ رپورٹ بھی پریزنٹ کی جائے گی. اس کی بنیاد پر پھر وہ ایونچولی ایک فیصلہ کریں گے, اور اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا.
آپ نے بہت کانفیڈنس سے کہا کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جا رہا, آپ کو کیسے لگتا ہے؟
میرا کانفیڈنس تو قانون کی زبان پر مبنی ہے. جب خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارشلی کمپلائنٹ ہیں اور 26 کرائیٹیریا میں آپ پارشلی کمپلائنٹ ہیں, باقیوں میں انہوں نے اسپیسیفک ریکمنڈیشنز دی اور پاکستان کی جو کوششیں ان کو سراہا بھی ہے. سو جب یہ آپ مٹیریل دیکھتے ہیں تو اس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیسس پہ آپ کو سیاسی فیصلہ بھی کرنا پڑے تو آپ پاکستان کو, کسی بھی فار دیٹ میٹر ملک کو جس کی یہ رپورٹ آئی ہو, اسے بلیک میں لے جانا انتہائی تعجب طلب ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ہوگا.
چیلنجز کیا ہیں, مطلب اس پارشلی اور لارجلی جو کمپلائنٹ سٹیٹس کو فلی کمپلائنٹ سٹیٹس تک لے جانے میں
چیلنجز امپلیمنٹیشن کے ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قانون چونکہ بن رہا ہے مختلف ایریاز کا, جوں جوں کرائم سوفسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں, ٹرانس نیشنل کوآپریشن کرمنلز کی بہتر ہو رہی ہے, سائبر بیسڈ ہو رہی ہے, الیکٹرانکلی ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ہو رہی ہے, وہ مختلف پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں. پہلے خطوط لکھتے تھے, پہلے ٹیلی فون پہ باتیں کرتے تھے, اب وہ واٹس ایپ یوز کوئی کر رہا ہے, کوئی سائبر سوفسٹیکیشن آ رہی ہے. اسی لیے فائنینشیل ٹاسک فورس بھی ریکوائر کرتی ہے کہ ممالک بھی سوفسٹیکیشن لائیں. اب آپ نے آج قانون بنایا ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مہینے کچھ سال تو لگیں گے نا.
ایف اے ٹی ایف کا یہ جو سارا ریویو ہو رہا ہے اور اس ریویو کے فالو اپ میں جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ اپنے آپ کو ایک رسپانسبل ریاست کے طور پہ پاکستان پر جو ابلیگیشن ہے اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنے کی, وہ کرے, اور وہ کرنی بھی چاہیے.
ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں آنے سے ہر سال پاکستان کو $10 بلین کا نقصان ہو رہا ہے, اور وہ لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ گرے لسٹ سے اسے باہر نکالا جائے, لیکن ابھی جو اے پی جی کی رپورٹ آئی ہے اس سے وہ تھوڑا اسہج استھتی میں پہنچ گیا ہے. بات بھارت کی. بہار میں ڈینگو کے مریضوں کا آنکڑا اس سال بیتے 7 اکتوبر تک 900 پار کر گیا ہے. اکیلے پٹنہ میں ہی 642 مریضوں کی پہچان ہو چکی ہے. عالم یہ ہے کہ پٹنہ میں 27 ستمبر کو ہوئی بھاری بارش کے بعد صرف 10 دن کے اندر ڈینگو کے 233 معاملے سامنے آ چکے ہیں. حالانکہ بہار سرکار جل جنت بیماریوں کو جو بھی چنوتیاں ہوتی ہیں جل جنت بیماریوں کی, ان سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کا دعویٰ کر رہی ہے, لیکن زمینی حالات ایسے نہیں دکھتے. سنیے پٹنہ سے سیٹو تیواری کی رپورٹ.
ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہیں, سسٹر بھی کلکٹر سے کم نہیں. بھگوان بھروسے مریض ہے, یدی ہم اچھے کرتب کیے ہیں تو میرا بیٹا بچ کے جائے گا.
بیٹا بچے گا کیوں نہیں, آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں؟ ابھی پلیٹلیٹ اس کا
105 ڈگری آج بخار ہو گیا تھا.
یہ کہتے ہوئے ستیش کمار سنگھ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں. ڈینگو سے پیڑت ان کا 18 سال کا بیٹا بیتی 1 اکتوبر سے بہار کے سب سے بڑے اسپتال پٹنہ میڈیکل کالج کے ڈینگو وارڈ میں بھرتی ہے, لیکن اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں ہے. ستیش مول روپ سے بہار کے اورنگ آباد ضلع کے سمرا لائن کے ہیں. کنال پٹنہ کے بورنگ روڈ علاقے میں رہ کر کے پڑھائی کرتا ہے. بیتی 30 ستمبر کو کنال نے طبیعت خراب ہونے کی جانکاری پریوار والوں کو دی, جس کے بعد اسے پہلے اورنگ آباد لے جا کر کے وہاں کے صدر اسپتال میں بھرتی کرایا گیا, لیکن بعد میں صدر اسپتال نے کنال کو PMCH ریفر کر دیا. پریشان پتا ستیش کہتے ہیں,
سواستھ منتری مکھ منتری سے نویدن کرتا ہوں کم سے کم اپنے سے آ کر اسپتال کی وستو استھتی دیکھ لیں. ہمارے چکتسک ایم پی سنگھ یونٹ کے ہیں, ابھی تک ایک دن بھی نہیں آئے دیکھنے, میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا.
راجیہ کے چیف ملیریا آفس کے مطابق بہار میں جنوری 2019 سے 7 اکتوبر تک 982 معاملے ڈینگو کے آئے ہیں, جس میں اکیلے پٹنہ میں 642 معاملے ہیں. پٹنہ میں جنوری سے 27 ستمبر 2019 تک ہی صرف 409 ڈینگو کے مریض تھے, جو شہر میں جل جماؤ کے بعد بڑھ کر 642 ہو گئے. یعنی صرف 10 دن کے بھیتر پٹنہ میں ڈینگو کے 233 مریض چنہت ہو چکے ہیں. پٹنہ کے بعد بہار میں ڈینگو سے سب سے زیادہ پربھاوت ضلع بھاگلپور ہے, جہاں ڈینگو کے 95 مریض ملے ہیں. وہیں چکنگنیا کی بات کریں تو بہار میں 7 اکتوبر تک کل 88 معاملے چکنگنیا کے آئے ہیں, جس میں اکیلے پٹنہ سے 74 معاملے ہیں. पटना के बाद वैशाली में 3 मामले चिकनगुनिया के रिपोर्ट हुए हैं। हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग 10, 11 और 12 अक्टूबर को पटना मेडिकल कॉलेज और नालंदा मेडिकल कॉलेज में डेंगू और चिकनगुनिया की जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाएगा। सिविल सर्जन आर के चौधरी बताते हैं,
जल जमाव था, वहाँ सब पानी गंदा है और गंदा पानी में डेंगू का जो मच्छर है वो नहीं पनप सकता। मलेरिया, फाइलेरिया, वही स्किन इन्फेक्शन वगैरह जो है सो डायरिया वॉशिंग की संभावना है, ताकि पानी जो है जो पीने का पानी है इसके लिए हम लोग दोनों ही चीज कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर और चूना का मिश्रण जो है लोगों को दे रहे हैं, प्लस हैलोजन टैबलेट्स दे रहे हैं।
हालांकि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में आकर ही खोखले साबित होते हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पहले तले पर बने डेंगू चिकनगुनिया वार्ड में मरीज और उनके परिजनों के पास अस्पताल की व्यवस्था को लेकर शिकायतों के अंबार हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं।
कोई यहाँ मोनो डॉक्टर ही नहीं,
मेन डॉक्टर कभी आए ही नहीं अभी तक,
कोई सीनियर डॉक्टर कभी नहीं आया, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ पर हॉस्पिटल चल रहा है। भरोसा तो लोग पूरे साला 40 जिला का है, वो पीएमसीएच
पर वाला कृपा है कि पीएमसीएच से भगवान भरोसे मैंने यहाँ से बच के निकल जाता है, नहीं तो अक्सर हाँ मैंने यहाँ पर आने के बाद में जाने के लिए मुश्किल है।
सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
और अब अखबारों की समीक्षा। हमारे साथ दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ हैं हमारे सहयोगी संदीप राय जी।
जी आदर्श, दिल्ली से छपने वाले आज के सभी अखबारों में भारत को मिले लड़ाकू विमान रफाल की खबर को सुर्खियां बनाई गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंचे हैं और उन्होंने लड़ाकू विमान की पूजा की और उड़ान भी भरी साथ में
जी।
इसके अलावा दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार कश्मीर, भीड़ की हिंसा और आर्थिक सुस्ती से घिरी सरकार को संघ प्रमुख मोहन भागवत से सरकार को बड़ा सहारा मिला है। भारत ने मॉब लिंचिंग को साजिश, मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को साजिश करार दिया और कहा कि ये शब्द ही गलत है। संघ का नाम लिंचिंग की घटनाओं से जोड़ा गया था पहले, जबकि संघ के स्वयं सेवकों का ऐसी घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए
जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा तोड़ते हुए रामलीला मैदान के बजाय द्वारका पहुंचे और वहां पे उन्होंने रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दैनिक भास्कर की खबर है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अपील की कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए काम करें और साथ ही खाना बर्बाद ना करें
जी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, हमारे सामने अखबार है, जिसमें लिखा हुआ है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर हमला करने वाले 2 आरोपियों में से एक को शिवसेना ने हरियाणा चुनाव में टिकट दे दिया है। राज्य में 21 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और शिवसेना ने नवीन दलाल को बहादुरगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। दलाल ने कहा है कि उन्होंने 6 महीने पहले शिवसेना में शामिल हुए क्योंकि राष्ट्रवाद और गो रक्षा की उनकी विचारधारा एक ही है। इंडियन एक्सप्रेस में ही एक दूसरी खबर है जिसके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोपनहेगन में हो रहे विश्व मेयर सम्मेलन में शामिल होने की यात्रा संबंधी इजाज़त केंद्र सरकार ने नहीं दी। अंतिम क्षणों में विदेश मंत्रालय से अनुमति न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है
जी। इस समय थोड़ा रुकूंगा आपको, ये है मेरे पास अमर उजाला और उसमें खबर है कि भारतीय सीमा में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोन और ये पंजाब में फिरोजपुर में हुसैन वाला बॉर्डर के पास बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की सीमा की तरफ से 5 ड्रोन देखे और 2 उनमें से जो थे वो भारतीय सीमा के अंदर आ गए और इसके बाद से सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, ये खबर है
जी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया है जिसमें आदेश दिया गया था कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों काफ़ी भारी जुर्माने को लेकर काफ़ी आक्रोश भी देखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले बीजिंग पहुंचे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमल बाजवा। बाजवा ने चीन से कश्मीर मुद्दे पर मदद मांगी है। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख इमरान खान के पहुँचने से एक दिन पहले ही वो बीजिंग पहुँचे और चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। बातचीत में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना भी शामिल था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और अब एक विज्ञान से जुड़ी हुई खबर। कार्नेजी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के 20 नए चंद्रमा का पता लगाया है। अब तक 79 चंद्रमा जो थे वो बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते थे और अब शनि ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले चंद्रमाओं की संख्या कुल हो गई है 82। तो जो ये नए 20 नए चंद्रमा का पता चला है जो शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये संख्याओं की ही बढ़ोतरी हुई है या फिर विज्ञान को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर, ग्रहों के निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों की और हमारी समझ में भी कुछ इजाफा हुआ है? इसे लेकर बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने वैज्ञानिक गौहर रजा से यही सवाल किया।
ये बात भी अद्भुत पता लगी है कि ये सैटर्न के साथ नहीं बने थे, तो इसका मतलब यह है कि ये कहीं बाहर से आए हैं और बाद में आए हैं, शुरुआती पीरियड में आए हैं लेकिन बाद में आए हैं बनने के। और ये टुकड़ों को आपस में टकराए होंगे इनमें से कुछ, तो वो कैप्चर कर लिए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। इससे हमें ये भी पता लगता है कि शुरुआती पीरियड में जो एनर्जी का डिसिपेशन था वो कैप्चर करने के बराबर था। आज जो स्टेबलाइज हो गए हैं प्लैनेट्स लगभग 4.5 बिलियन साल बाद, तो या तो वो टकरा जाएंगे, स्पाइरल की शक्ल में अंदर मिल जाएंगे, और या फिर वो दूर निकल जाएंगे अगर ऐसा कोई पिंड आता है किसी बड़े प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो हमें ये भी मालूम होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो किस तरह से बना है और कौन से फोर्सेस ऑपरेट कर रहे थे, तो खबर अपने अंदर बड़ी है।
वैज्ञानिकों में होड़ लग गई है इन 20 चांदों के नाम रखने के लिए, तो ये नाम किस आधार पे रखे जाते
हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है एक, वो असल में नाम एक्सेप्ट करती है, और इन 20 चांद के तो जाहिर है कि उन्होंने अनाउंस किया है और मांगे हैं, और तीन सभ्यताओं के, अलग अलग सभ्यताओं की जो के जो नाम रहे हैं, मिथिकल कैरेक्टर्स रहे हैं, उनसे मिला करके ये नाम मांगे जा रहे हैं।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला टीम दूसरे नंबर पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 191 अंकों के साथ पहले स्थान पर अपना दबदबा कायम रखा, जबकि मिताली राज की कप्तानी में टीम ने 125 अंकों के साथ दूसरे पायदान को मजबूत किया है। सोमवार को ICC ने ताजा महिला वनडे रैंकिंग जारी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड की टीम क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पिछले साल अक्टूबर में ICC ने महिला टीमों की रैंकिंग जारी की थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम तब से वनडे और T20 में पहले स्थान पर बनी हुई है। T20 रैंकिंग में भारतीय महिला टीम 5वें नंबर पर है, और आज 9 अक्टूबर के दिन महिला टीम का वनडे इंटरनेशनल में सामना होगा साउथ अफ्रीका की टीम से। कैसा रह सकता है ये मुकाबला, आइए जानते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल से।
देखिए, ये मैच जो हो रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी खेल रही है, भारत की टीम भी अच्छी खेल रही है। अभी पीछे अमेरिका वाले उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम ने मैच लास्ट मैच जीता था, और क्या है कि इनकी क्रिकेट जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जा रही है तो मैचेस भी काफी अच्छे हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कह देना कि उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडियन टीम भी काफी अच्छी है, और इंडियन टीम को जो वुमन टीम है इनको अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो मेरे विचार में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा मोर इंटेंसिटी से खेलना पड़ेगा, तभी जाके वो साउथ अफ्रीका की टीम को हरा पाएंगे।
ये थे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल। और अब जाने से पहले बात बॉक्सिंग की। भारत की मंजू रानी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम 16 के मुकाबले में आसान जीत के साथ विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीय भारतीय मुक्केबाज मंजू ने वेनेजुएला की रोजास को 5-0 से हराया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई में व्हाइट हाउस ने यूरोपीय संघ में तैनात अमरीकी राजदूत को पेश होने से रोक दिया है। ब्रिटानी सरकार के करीबी सूत्रों ने कहा है कि ब्रेक्जिट समझौता अनिवार्य रूप से असंभव हो गया है। इक्वाडोर में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो को सरकारी मुख्यालय को दूसरे शहर में स्थानांतरित करना पड़ा है। सीरिया में कुर्द लड़ाकों के कमांडर ने कहा है कि वो हालात का समाधान निकालने के लिए अभी भी अमरीका से बात कर रहे हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने चीनी अधिकारियों पर वीजा पाबंदी लगा दी है। चीन ने इसे अंदरूनी मामले में दखल बताया है। फिजिक्स के लिए इस साल का नोबल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों का काम ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान से जुड़ा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक bbchindi.com के साथ जुड़े रहिए। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।